सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे राम 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 हरे हरे। हे मेरे प्रिय पुत्र, इसके बाद आप जो नौ भाई हैं और जो कि प्रजापति हैं, आपने अच्छी तरह से यज्ञ किए रीति रिवाज के साथ और दोनों प्रकट और अप्रकट व्यक्ति को संतुष्ट किया। मैं श्री गुरु श्री प्रभुपाद और आप सब वैष्णवों का आशीर्वाद चाहता हूँ, विशेष करके वृंदावन के श्री गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। आज के श्लोक में जो है बताया गया कि कैसे यज्ञ के द्वारा प्रकट और अप्रकट व्यक्तियों को संतुष्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर प्रकट का मतलब है देवता। हम श्रीमद् भागवत के कई स्कंद में पढ़ते हैं कि जब यज्ञ ठीक ठाक होता है तो अनेक देवता प्रकट होते हैं और अपनी अपनी आहुति को अपने अपने हिस्से को स्वीकार करते हैं। और वो जो पुरोहित होता है, जब वो मंत्र बोलते हैं तो वो ऐसे मंत्र बोलते हैं कि ये देवता अभी आ जाए अपना हिस्सा लेने के लिए, और वो देवता प्रकट हो जाते हैं। कुछ देवताओं का पोस्ट भी जो है कर्म मिश्रित भक्त हैं, तो इनकी इच्छा क्या है कि वो थोड़ी सेवा भी करना चाहते हैं और थोड़ा भोग भी करना चाहते हैं, तो इनको भी अच्छा लगता है। नहीं आपको कोई बुलाए और बोले ये लोग आपके लिए स्वीट राइस है और आपके लिए कुछ कपड़े हैं और ये थोड़ा पैसा है, कोई इनाम कुछ दे रहा है कुछ, तो देवताओं को मटीरियल चीजों से आसक्ति रहती है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि जब कोई यज्ञ कर रहे हैं इसलिए वो प्रसन्नता से प्रकट होते हैं। लेकिन वो जानते हैं कलयुग में सब बदमाश है कि ब्राह्मण लोग यज्ञ करना ही नहीं जानते, इसलिए कलयुग में देवता आते ही नहीं है। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि वे देवता दिखाई पड़े थे, लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद परपोट में साफ लिख रहे हैं कि कलयुग में देवता नहीं आते, और आए भी तो उनको देखने के लिए भी आंखें चाहिए। भगवान को यहाँ प्रकट बताया गया, देवताओं को प्रकट बताया गया, लेकिन देवताओं को भी देखने के लिए एक प्रकार की दृष्टि चाहिए। तो ये वैसे भी हमारे लिए इतना रुचिकारक विषय नहीं है, क्योंकि अगर देवताओं को देख भी लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देवताओं को देखेंगे क्या भरी बोल प्रभु इंद्र प्रभु कैसे हैं, क्या चल रहा है, वो अपने फैमिली लाइफ का बोलने लगेंगे, इनके भी इंद्र तृप्ति है, क्या प्लान चल रहे हैं, कौन सा यज्ञ, कौन कितना यज्ञ कर रहा है, उनके जासूस घूम रहे होते हैं सब जगह देखने के लिए, वो डर लगा होता है मेरा नेक्स्ट पोस्ट। क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर टर्म होता है ना इलेक्शन का, 4.5 साल होते ही वो कुर्सी थोड़ी डेंजरस लगती है। वैसे इंद्र का भी पोस्ट है, तो ज्यादा ये जाना चाहिए कि जो डिवोटी है, ये प्योर डिवोटी है, जिसके भक्ति मुक्ति स्प्रिया विहीन है ये भक्त, ताके संग मांगे अनुरक्त। ठाकुर भक्ति बोलते हैं कि इसके अंदर मुक्ति और भुक्ति, ये मुक्ति और भुक्ति की तुलना वो पिशाचिनी से करते हैं, राक्षसी से, वागिनी से। वाघ को देखे अपने पास से, वागिनी भयानक, हमने जू में देखा होगा बीच में जाली होती है इसलिए बच जाते, एकदम पास से कभी नहीं देखा होगा। नहीं, एक बार हम लोग गोवा से बेलगाम आ रहे थे तो एक एक्चुअली शेर ने आक्रमण किया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी, जोर से छलांग लगाया था एक ट्रक के ऊपर। वो हाईवे है NH4, वो जंगल है एक्चुअली इलाके से, लेकिन वो बेचारा आक्रमण करने आया और उसने एक व्हीकल पे गिरा और वहीं वो घायल हो गया और तड़प रहा था। उसको पानी देने कौन जाएगा, सबको डर लग रहा था अंत में इसके लिए, लेकिन भयानक सीन था देखना, शेर को या शेरनी को बिना पिंजड़े के देखना, हल्के घायल थे सब, सब अपने व्हीकल्स को फास्ट लेके जा रहे थे साइड से। तो वागिनी बताया गया, ये भुक्ति की इच्छा और मुक्ति की इच्छा जो है ये वागिनी के समान है, पिशाचिनी के समान है, क्योंकि ये सेवा के प्रवृत्ति को रोकती है। भक्त के लिए ये सब ऑब्स्टेकल्स हैं भक्ति में, इसलिए भक्ति में ठाकुर बोलते हैं मैं ऐसे भक्त का संग चाहता हूं जिसके अंदर भुक्ति की भी इच्छा नहीं हो मुक्ति की भी इच्छा नहीं। ऐसा अगर कोई भक्त है इसको तनिक भी स्पृहा नहीं है, भुक्ति बिना भुक्ति मुक्ति बिना स्पृहा, ये भक्त स्पृहा का मतलब होता है टिंज, थोड़ा सा हल्का सा कलर भी नहीं है, वो व्यक्ति का संग मैं करना चाहता हूं। देवताओं के संग के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है, ये देवता ईश्वर है, वो कंट्रोलर है, और हो सकता है कि आप में से कोई या मेरे या मैं, अगर हमारे अंदर अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और हम भक्ति करना भी चाहते हैं और इच्छा है कि ऐसी कोई सेवा मिले जिसमें मुझे आधिपत्य मिले, मुझे कंट्रोल मिले, तो व्यक्ति को इंद्र बना सकते हैं या वो व्यक्ति कोई देवता बन सकता है या देवताओं का असिस्टेंट बन सकता है, जैसे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड यानी वो उस इलाके का इंद्र है, ठीक है, जैसे मैं साउंड सिस्टम का इंद्र हूं, कोई हिलेगा नहीं सिस्टम मेरे बिना, ये मैं बोलूंगा वैसे ही होगा, और फिर सब इंद्रों का एक और इंद्र है जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो मानव प्रवृत्ति है कि हर व्यक्ति आधिपत्य चाहता है, कंट्रोल चाहता है, और कोई व्यक्ति चाहता नहीं कि मेरे को लोग कंट्रोल करें, बहुत मुश्किल है। अब कंट्रोलिंग मेंटेलिटी जो है वो बंधन का कारण बनती है, क्योंकि कृष्ण ही कंट्रोलर है। प्रभुपाद एक सुंदर लेक्चर में सुन रहा था अभी, प्रभुपाद जी बोलते हैं वन हु एग्रीज टू बी परफेक्टली कंट्रोल्ड बाय गॉड इज फिट टू गो बैक टू गॉडहेड। अगर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि जैसे भगवान कृष्ण नचा रहे हैं मुझे, वैसे पूर्ण रूप से नाचने को तैयार हूं, तो बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। बस इतना ही, हम इमीडिएट कॉज देखते हैं कि मेरे बीमारी का कारण ये है, मेरे तकलीफ का कारण ये भक्त है, अगर सर्विस इंचार्ज कोई और होता तो मेरे को ये डिपार्टमेंट में कभी नहीं डालते, और हम उसको ब्लेम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये देख सकता है कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और खुशी से, जैसे हवा के इशारे से तिनके उड़ते हैं, वैसे भगवान की इच्छा के अनुसार जो हर स्थिति को स्वीकार करता है वो भगवान के धाम जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है देवता में और शुद्ध भक्त में। देवता जो है वो दूसरों को भी वश में करना चाहते हैं, और भक्त जो है वो वश में होने में आनंद लेता है। आधिपत्य कंट्रोलरशिप का अर्थ होता है स्वामी बनने की इच्छा, स्वामी बनने की इच्छा, और सेवक का अर्थ है दास बनने की इच्छा, कंट्रोल्ड बनना। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि ये दो मेंटेलिटी हैं, कंट्रोलिंग और कंट्रोल, क्या कंट्रोल है, क्रिएटरशिप, ईश्वर बनना और रचयिता बनना, ये प्रवृत्ति जो है बंधन का कारण बनती है। तो देवताओं के अंदर प्रवृत्ति है, इसलिए हालांकि देवता भी पूजनीय है, साधारण व्यक्ति देवता नहीं बन सकता, बहुत सुकृति करने के बाद व्यक्ति को देवता बनने का सौभाग्य मिलता है, परंतु देवता से भी ऊंचा पोस्ट जो है एक शुद्ध भक्त का है। श्रील प्रभुपाद एक बार भक्तों से कह रहे थे, यू डू नॉट नो इन दिस मूवमेंट होम यू आर एसोसिएटिंग विद, हमें पता नहीं है ये मूवमेंट में कि हम किस लोगों से संग कर रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं और उनके कई सीनियर वैष्णव हैं जो अभी धरती पे हमें संग दे रहे हैं, उनका पोस्ट जो है उनकी शुद्धता जो है देवताओं से भी ज्यादा है। बोलना बहुत आसान है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, एनालाइज करना भी आसान है। प्रेम गौरंग प्रभु ने एक बहुत सुंदर क्लास दिया था उस पर, ये अभी तक याद है, लेकिन अभी तक वो एनालाइज समझ में आ गया, लेकिन उसका आचरण करना बहुत डिफिकल्ट। एक्चुअली शुद्ध भक्त का मतलब क्या है, और कोई इच्छा नहीं होना, कृष्ण की अनुकूल रूप से सेवा करना, लेकिन सूक्ष्म जो भावनाएं होती हैं वो हृदय में रहती हैं हमेशा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो इनमें से कोई भी भावना ऊपर उठ सकती है, हमें पता नहीं होता कि क्या भावना आएगी, और कौन सी भावना प्रकट होती है उसके अनुसार अगला शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भक्त का प्रयास रहता है कि मृत्यु आने से पहले मैं वो चेतना में पहुंच सकूं जो ठाकुर भक्ति विनोद बताते हैं कि कृष्ण मैं आपके प्रति समर्पित हूं हर स्थिति में, मारो भी रखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति अधिकार, मैं तो आपके चरणों की शरण में आ गया हूं, जो भी होगा वो आपकी इच्छा से होगा, और मैं आपके बुद्धि में और आपके इरादों में पूरा भरोसा करता हूं। कृष्ण इतने बुद्धिमान है कि अगर वो किसी जीव को तकलीफ दे रहे हैं कि अगर वो जीव को विपत्ति आ रही है या गरीबी आ रही है तो उसके लिए अच्छा है। वैसे भी अगर आप चाहें या नहीं चाहें, प्रकृति के नियम के अनुसार हर व्यक्ति को दुख आएंगे ही, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, दुनिया दुखालय है। अगर आप उस स्थिति को ऐसा स्वीकार करते हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं, मैं तो अपने कर्मों के कारण शायद और भी ज्यादा दुखी होता था, लेकिन कृष्ण ने दया करके मुझे थोड़ा सा रिएक्शन दिया। अगर हम धन्यवाद देते हैं कृष्ण को उस तकलीफ के लिए और अपनी भक्ति की साधना को बनाए रखते हैं तो हम प्रगति कर पाते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर। और अगर उसी स्थिति में अगर हम शिकायत करते हैं और भगवान को दोषी ठहराते हैं तो भी हमें दुख तो सहन करना ही पड़ता है, चाहे हम दोष भगवान को दें या सर्कमस्टांसेस को दें, स्थिति को दें। और फल ही होता है कि क्योंकि हमने उसको भगवान की कृपा के रूप में नहीं देखा, इसलिए हमने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने का एक अवसर खो दिया। फिर आपको दूसरे अवसर फिर से आएंगे, दूसरे अवसर फिर से आएंगे, और अगर हम उसको सही रूप में स्वीकार करते हैं तो हम प्रगति करते हैं। और सही रूप क्या है? एवरीथिंग इज कृष्णा मर्सी। इस ब्रह्मांड में सब कृष्ण की कृपा है, आकाश के तारों से लेकर पृथ्वी के कण तक, सांप से लेकर देवता तक, हर जीव कृष्ण के अधीन है और हर जीव के द्वारा कृष्ण मुझे शुद्ध बना रहे हैं। हर स्थिति कृष्ण के अधीन है। मैया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर। भगवान ही बोलते हैं प्रकृति को, जाओ अभी टेम्परेचर कम करो, बहुत गर्मी हो गई। कई बार भगवान बहुत सर्दी भेजते हैं। अगर हमारी दृष्टि बदल जाती है, एक चश्मा पहन लेना चाहिए। एक चश्मा है, उसके लेफ्ट चश्मे पे कृष्ण और राइट में भी कृष्ण, तो आप अंदर बाहर कृष्ण को ही देखेंगे और हर स्थिति में आप धन्यवाद देंगे। और वास्तव में कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ कृष्ण ही है, क्योंकि जैसे माइक है ये कृष्ण की शक्ति से बना है, जिसके एलिमेंट्स हैं ये धातु है वो कृष्ण से ही आ रहे हैं, और कृष्ण और कृष्ण की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये भी कृष्ण ही है। तो भक्त देखते हैं मैं कृष्ण को ही देख रहा हूं, ये कृष्ण ही है। ये वृंदावन में एक बार कुछ डाकू आक्रमण करने के लिए आए थे, आपने सुना होगा कहानी, कुछ गैंग डकॉइस के थे, और तब एक युवती बता रहा था कि मेरे ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था, मुक्तकेश प्रभु वृंदावन के युवती मुंबई में आए थे कुछ समय के लिए, बता रहे थे मेरे ऊपर जब उन्होंने गन एम किया था मैं वो दो होल्स में कृष्ण को देख रहा था, राधा वृंदावन चंद्र। बहुत डेयरिंग चीज है सोचने के लिए, नहीं बहुत मुश्किल चीज, हमें तो सब्जी टेस्ट ही नहीं होती तो कृष्ण नहीं दिखाई पड़ता। हम भूल जाते हैं कि अभी 9:30 बजे भगवान कृष्ण ने खाया है तो मेरे को लेने में क्या आपत्ति है। वो वास्तव में देख रहे थे, ऑफकोर्स भगवान की दया से एक दूसरे डिवोटी ने उस डाकू को पकड़ लिया और तो बचा दिया, लेकिन वो धन्यवाद दे रहे थे कृष्ण को। पिछले रविवार को दादा गोपीनाथ मंदिर में शिला भक्ति राघव गोस्वामी महाराज पधारे थे, शिला प्रभुपाद के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं, वो अपने जीवन की कथा बता रहे थे कैसे हर घटना जो है भगवान की कृपा है, और हर घटना को भगवान की कृपा देखना जो है वो सत्य है। ऐसा नहीं है कि कैमोफ्लेज्ड है, ऐसा नहीं कि जैसे हम कोई बीमार आदमी को शांत करने के लिए बोलते हैं कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, वो मर भी रहा होगा तो हम बोलेंगे उससे विश यू गुड लक। अब तो डॉक्टरों ने बोल दिया, मटेरियली देखें तो गुड लक है ही नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली हर चीज में जो कृष्ण की कृपा देखते हैं वो हाथ में मुस्कुरा सकते हैं। मैं जब पुणे में जब रहता था तब श्री राधानाथ महाराज अक्सर वहां आते थे, हर तीन महीने में एक बार। तो एक बार मैं बहुत बीमार था तो महाराज मिलने आए और बोले सफर ब्लिसफुली, बड़े आनंद के साथ दुख भोगो। अभी सुनना बड़ा मुश्किल लगता है, नहीं कहते आनंद से प्रसाद खाओ तो ठीक है, या आनंद से कीर्तन में डांस करो, लेकिन आनंद से दुख भोगो इसका मतलब ये कि स्थिति में देखो कि कृष्ण मेरे को शुद्ध बना रहे। तो भक्ति राघव गोस्वामी महाराज बता रहे थे जीवन में कैसे उनको बहुत सारे तकलीफें आई, वो कनाडा से थे और वहीं पर भक्त बने, भारत में आए। और उस समय श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी बहुत से विदेशी भक्त भारत में ही रहें और मायापुर प्रोजेक्ट में मदद करें, तो उनको ये पता चला तो वो भी खुश हो गए कि इंडिया में रहना, जो भक्त उसमें भक्त बन रहे थे उनके लिए भारत में रहकर प्रभुपाद के मिशन में सेवा करना एक बहुत सौभाग्य मानते थे। लेकिन अगर उनको इंडिया में रहना है तो अपने टेम्पल प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा, तो टेम्पल प्रेसिडेंट से उन्होंने परमिशन ली और उन्हें साफ मना कर दी। टेम्पल प्रेसिडेंट जनरली भक्तों को छोड़ते नहीं आसानी से, या तो वो कोई सेवा नहीं कर रहा तो बात अलग है, जो भी अच्छी सेवा कर रहे हो तो वो चाहेंगे कि यहीं पर रहे। और ये कुक थे, ज्यादा भक्त थे ही नहीं मंदिर में, तो इसलिए वो उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान की इच्छा नहीं है मैं यहीं पर रहूंगा, यहाँ मैं वापस जाऊंगा कनाडा। फिर श्री जयपतक स्वयं महाराज और भवानंद महाराज ये सबको बोल रहे थे आप रुक जाओ इस तरह से, तो उनके पास भी आए बोले आप रुक जाओ, बोले कि मंदिर के प्रेसिडेंट ने परमिशन नहीं दी। उनको बताया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोले नहीं मैं बिना परमिशन के नहीं रुकूंगा। उतने में वो निश्चय के वापस जाने का समय आ गया, मायापुर से वे लोग वृंदावन आए। प्रभुपाद जी सिस्टम रखा था कि सब भक्त गौर पूर्णिमा के लिए मायापुर आए और मायापुर के बाद वृंदावन आए, अभी भी ऐसा सिस्टम है, मायापुर वृंदावन फेस्टिवल कहते हैं। वृंदावन कुछ समय रहने के बाद वो दिल्ली से फ्लाइट से जा रहे थे और उन्हें अपना एयरपोर्ट तक पहुंचे, अपना बैग रखा और उसके बाद बैग को चेक कर लिया, मतलब अंदर भेज दिया सामान के साथ, और अचानक जयपतक स्वयं महाराज आए और बोले कि आप यहीं पे रहो, हमने बात कर ली है। क्योंकि नया नया रूल बना है कि अभी कनाडा से कोई अगर भारत आना चाहते हैं तो वीजा जरूरी है, अभी तक जरूरी नहीं है था, तो आप तो अभी आ गए हो, तो अगर आप चले जाओगे तो शायद वीजा नहीं मिलेगा, आप यहीं पे रुको। उन्होंने बोला मेरा सामान चला गया, तो कोई बात नहीं नया सामान दे देंगे आपको। तो उनको लेके कार में एक साइड में जयपतक महाराज बैठे, दूसरे साइड में श्रीधर महाराज, बीच में पतले से भक्ति राघव महाराज, उनको लेके गए सीधा ही एयरपोर्ट से सीधा वापस दिल्ली मंदिर। फिर हमने जब प्लेन चला गया उसके बाद एक बहुत ही स्लो ट्रेन से दिल्ली से मायापुर भेज दिया। अरे मायापुर में पहुंचे एक बार टूथपेस्ट भी नहीं था, फिर भक्तों ने मुझे कुछ अरेंजमेंट किया, मैं कुक था ये लोग जानते थे, तो मैं तुरंत किचन डिपार्टमेंट भेजा। लेकिन चार पांच दिन मेरे कुकिंग को टेस्ट करके मेरा करियर अंत हो गया कुकिंग का। फिर मेरे को दूसरी सेवा दी गई और अंत में उनको प्रचार की सेवा दी गई। उन्होंने इतना शक्ति दिखाई कि करीब एक या दो साल में 1200 नामहट्ट केंद्र खोले, 1200 सेंटर्स एक या दो साल में। बहुत भगवान के चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा थी। लेकिन 1984 में आपको पता है मैं मायापुर के पास बहुत सारे मुस्लिम्स भी रहते हैं, स्पेशली आप बामन पुकुर जाएंगे मुरारी गुप्ता के घर के पास बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, उस समय भी थे और परंपरा चल रही है। तो कुछ मुसलमान आक्रमण करने आए राधा माधव मंदिर पर और भक्त बहुत कम थे, भक्त भी लड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और वो हैंड ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स लेकर आए थे। यहाँ पर पंकज आंगरी प्रभु वो भी गन से शूटिंग कर रहे थे राधा माधव की रक्षा के लिए। अब भक्ति राघव महाराज डीटीस के पास रक्षा के लिए खड़े हुए थे और किसी मुसलमान ने उनके पैरों पे एक बॉम्ब फेंक दिया जिसमें उनका पैर हमेशा हमेशा के लिए कट गया, ताकि वो एक पैर पर ही कचिश से चलते। लेकिन आप उनका उत्साह देखेंगे और उनकी वो मंगल आरती गाते हैं कच्छिस में, मैंने गुरु पूजा किया कच्छिस में प्रभुपाद के, और इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं विशेष करके साउथ इंडिया में सिकंदराबाद वगैरह में उनके कई शिष्य हैं, तो बतला रहे थे कि मैं इस सब चीज को भगवान की कृपा ही मानता हूँ, भगवान की कृपा है। तो मैं सोच रहा था हमारी हमारे जीवन में कोई छोटी सी तकलीफ आती है, पैर कटने से तो बहुत कम है, तो हम भी अगर इसको स्वीकार कर सके कि कृष्ण की कृपा है तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। बाद में उनको पिछले 13 साल से भारत में आने के लिए मना किया गया क्योंकि कुछ पॉलिटिकल कारण से उनको वीजा नहीं मिला, और अब वो 13 साल बाद पहली बार भारत आए राधा गोपीनाथ मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में पहला शहर वहीं पे आए, बम्बई में आए, और बहुत सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया पिछले रविवार को। तो भक्त को यही चेतना रखनी चाहिए कि मेरे को भुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उस चेतना में रहना चाहता हूँ कि कृष्ण को मैं आनंद दे रहा हूँ हर स्थिति में, मैं हर स्थिति में मेरी हर क्रिया मेरा हर श्वास कृष्ण को प्रसन्न करता है। और फिर जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लास्ट लाइन में परपोट के कि वन हु हैज दिस ऑइंटमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड इवन टुडे यू कैन सी गॉड, previously you could not see God, you could see demigods, but now you cannot see demigods also, but if you have love for God you can see God। पहले जमाने में तो देवताओं के दर्शन होते थे, भगवान के बहुत दुर्लभ होते थे, लेकिन प्रभु जी बोलते आज भी अगर आपकी आंखों में प्रेम का अंजन है तो आप कृष्ण को देख सकते हैं। एक फेमस वार्तालाप है श्रील प्रभुपाद का, जहां पर वे एक भक्त पूछते हैं, भक्त नहीं सॉरी एक बाहर का व्यक्ति शायद नास्तिक कहते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, हमें सुना होगा ये बात, हैव यू सीन गॉड। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, अगर मैं बोलूंगा हाँ या नहीं तो आप स्वीकार करेंगे कि आपको विश्वास है मेरे शब्दों में, तो उसने कहा मुझे विश्वास है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि मैं केवल मैंने भगवान को देखा है, मैं हर क्षण भगवान को देख रहा हूँ, और आप भी देख सकते हैं, आपको भी कैटरेक्ट हो गया है मोतियाबिंद, और मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास आओ ऑपरेशन करा लो, फिर आप भी भगवान को देख सकोगे अंदर बाहर सब जगह पर। एक बार तो एक लेडी न्यूज रिपोर्टर एक माताजी प्रश्न पूछ रहे थे कि स्वामी जी आपने कब भगवान के दर्शन किए, कौन सी उम्र में। तो प्रभुपाद जी सोचे तो क्या बताऊं, प्रभुपाद जी बोले देखो भगवान सब जगह पर है, सूर्य का प्रकाश है वो भी भगवान है, पानी का रस है वो भी भगवान है, इस तरह से आप भगवान को सब जगह देख सकते हैं। नहीं 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 स्वामी जी शायद आप मेरे प्रश्न को समझे नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कब भगवान कृष्ण को देखा। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो भगवान के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ब्राह्मण परमात्मा और भगवान, अपने अपने प्रगति के अनुसार व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार करते हैं। नहीं नहीं स्वामी जी आप समझे नहीं मेरी बात को, आप ये बताइए कि आपने कब भगवान के दर्शन किए पहली बार। प्रभुपाद जी बोले जब मैं 4 वर्ष का था। इसका मतलब वो 4 वर्ष जब थे तब उनको उस समय का याद है, वो तो हर समय देख रहे, क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वो हर समय भगवान को देखते हैं। सावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। तो शुद्ध भक्त होते हैं जब वो थावर कोई पेड़ को देखते हैं या जंगम कोई पशु को देखते हैं, वो सब जगह पे कृष्ण को देखते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु गया से लौट कर आए तो हर समय कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे, प्रेम में मग्न थे, और उस समय वो कहने लगे भक्तों से, मैं सत्य बोलूं तो मैं अब ये ग्रामर क्लास नहीं ले सकता, ये व्याकरण सिखाना अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं जहां भी देखता हूं मुझे एक श्याम रंग का एक नवयुवक दिखाई पड़ता है, बस मुझे और कुछ नहीं भाता है, बस मुझे सब जगह पर वही कृष्ण के दर्शन होते हैं। और फिर कभी कभी वो कृष्ण से विरह अनुभव करते हैं, कभी कभी कृष्ण भक्त को दर्शन देते हैं सिर्फ इसलिए जिससे उसकी विरह की भावना और बढ़ जाए। हम भागवत के प्रथम स्कंद में देखते हैं कि जब नारद मुनि पहले तो अपनी माता के साथ रहते हैं, दासी ये दासी के रूप में होती है, और वो इतनी महान भाग्यशाली स्त्री होती है कि वो साधुओं की सेवा कर रही होती है, वैष्णवों की, भक्ति वेदांत की प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति वेदांतस के, और उनकी अनुमति से महाप्रसाद भी ग्रहण करते हैं, और ये महाप्रसाद ग्रहण करने से नारद मुनि भी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। और बाद में एक सांप के काटने से नारद मुनि की माता की मृत्यु हो जाती है, और नारद मुनि सब कुछ छोड़कर भगवान की खोज में निकल पड़ते हैं। और जब वो वन में भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो एक बार वास्तव में उनको भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन फिर भगवान अप्रकट हो जाते हैं। बहुत संघर्ष करने पर भी फिर से उनको हृदय में भगवान नहीं दिखाई पड़ते, और एक आवाज सुनाई पड़ती है कि इस जन्म में आप मुझे फिर नहीं देख सकोगे, ये मैंने आपको दर्शन इसीलिए दिए जिससे कि आपकी उत्सुकता बढ़ती है। जब कोई चीज नहीं होती तो हम उसको प्राप्त करने का प्रयास उतना नहीं करते, लेकिन जब कोई चीज होती है और खो दी जाती है तो हमारी उत्सुकता और बढ़ती है। इसीलिए भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए मथुरा, क्योंकि वो गोपियों के साथ विप्रलंब प्रेम और बढ़ाना चाहते थे। गोपियां फिलॉसफी के लिए जानते थे, जब उद्धव जी संदेश लेकर आए तो गोपियों को पता था कि परमात्मा के रूप में भगवान सब जगह पर हैं, घट घट में भगवान हैं, लेकिन फिर भी गोपियां उस श्याम सुंदर रूप को देखने के लिए तरस रहे थे। सुबह से शाम तक गोपियां कृष्ण के आने की इंतजार करते, फूल की माला बनाते और इस कृष्ण के लिए मक्खन बना के रखते कि कृष्ण अभी लौट के आएंगे। रात तक इंतजार करते और कृष्ण नहीं आते, इस आशा से जीवन को बचाए रखते कि कृष्ण लौट के आएंगे। श्रीमती राधा रानी बताती है ना उद्धव जी से मथुरा संदेश में, गुरु गोविंद महाराज की किताब में है, कि एक पक्षी है जो एक पिंजड़े में फंसा हुआ है, मेरे प्राण उस पक्षी के समान है, और वो पक्षी उड़ भी नहीं सकता क्योंकि जो मालिक है उसने पिंजड़े के ऊपर एक बोल्ट लगा रखा है दरवाजे। इसे कृष्ण ने एक बोल्ट लगा रखा है, एक बोल्ट को क्या बोलते हैं, कुंडा, एक कुंडा लगा रखा है। और कुंडा क्या है, ये उनका वचन, क्या वचन, कि मैं लौट कर आऊंगा, अगर ये वचन नहीं होता तो मैं अपने प्राण त्याग देता। इनफैक्ट गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं जगन्नाथ की लीला में कि भगवान कृष्ण भी बताते हैं कि मैं रोज भगवान नारायण की आराधना करता हूं जिससे श्रीमती राधा रानी के प्राण बने रहे, और मैं भी अपने प्राणों को इसलिए बनाए रखता हूं जिससे श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो। तो ये जो मिलन के जो आनंद है या मिलन में जो लाभ है उससे ज्यादा जो है विरह का प्रेम है। गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है कि हमेशा कृष्ण के लिए रोते रहना, बस रोते ही रहना कृष्ण के लिए। गोपियां रोते ही रहते हैं, जगन्नाथ भगवान की आंखें देखिए आप बड़े हैं आश्चर्य में, वो कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी के विरह में इस महाभाव प्रकाश को प्रकट कर रहे हैं। वो महाभाव जो कि श्रीमती राधा रानी का ही एकमात्र अधिकार है, तो भगवान जगन्नाथ प्रकट कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु वो श्रीमती राधा रानी के भाव में है, और वो भी विरह का प्रेम प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी सुनते हैं तो कोई विश्वास नहीं होता कि चैतन्य महाप्रभु प्रेम से कभी रोने लगते थे, उनके पूरे कपड़े भीग जाते थे, और आसपास के सब जगह भक्तों को भी ऐसा होता था। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ पुरी में होते तो भक्त ढूंढ रहे होते भगवान कहां चले गए, और फिर वो क्या देखते कि भगवान एक जगह पर हैं, उनका पूरा शरीर एक भोपला के समान बन गया, उनके हाथ और पैर अंदर चले गए हैं, और गाय जो है उनको सूंघ रहे हैं, और बहुत प्रयास करने से गाय छोड़ नहीं रहे उनको। श्री कबीराज गोस्वामी बोलते हैं कि हालांकि आपको ये समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, फिर भी सुनना चाहिए। ये अंत्य लीला में जो भाव विकार का वर्णन किया गया कि भगवान के विरह में चैतन्य महाप्रभु के अंग अंदर चले जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, कभी कभी उनका शरीर ऐसा हो जाता है कि जो ज्वाइंट के बीच में मांस लटक रहा है इससे इलोंगेटेड हो जाते हैं इससे, कभी कभी उनका शरीर पूरा सफेद हो जाता है। तो ये लक्षण को समझना मुश्किल है, नहीं कविराज गोस्वामी बोलते हैं फिर भी ये सुनना चाहिए, क्योंकि इसे पता चलता है कि ये गौड़ी वैष्णव कितने महान स्टेजेस तक वर्णन है, और साथ साथ हमारी प्रगति होती है सुनने से। आप सब वो कहानी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक बार एक्सेसी में आकर यमुना में छलांग लगा देते हैं, यमुना में गिर पड़ते हैं, सॉरी समुद्र में गिर पड़ते हैं यमुना समझ के। अब यमुना समुद्र एक ही बात है, यमुना और समुद्र उनके लिए वो नीला जल समझ लेते हैं। और एक मछुआ उनको पकड़ लेता है, वहां पर तैरते 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 19 किलोमीटर दूर कोणार्क तक पहुंच जाते हैं। आपने सुना है कोणार्क के बारे में, सूर्य मंदिर। और वहां पर एक फिशरमैन उनको अपनी जाल में पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं बड़ी मछली है, महीने भर और कोई मछली नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन महाप्रभु को देख के उनको आश्चर्य होता है, शरीर बहुत लंबा हो गया था, बहुत देर पानी में रहने के कारण पूरा शरीर सफेद हो गया होता है और उनकी आंखें खुली होती हैं और मुंह से गौं 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 आवाज निकल रही होती है। मछुआ भी घबरा जाता है और जैसे ही वो स्पर्श करता है महाप्रभु की कृपा से उनके अंदर प्रेम का विकार होता है, महाप्रभु कृपा से उनके अंदर भगवत प्रेम की जागृति होती है और वो मछुआ पुकारने लगता है, हरी हरी कृष्ण कृष्ण राम राम, तरफ हरी कृष्ण राम हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 बोलते हुए एक्सेसी में आता है और सुपता नहीं होता। वो महाप्रभु को अपने घर ले आता है लेकिन घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि आज मछली की जगह मैंने एक भूत को पकड़ लिया। वो डर जाते हैं और डर जाके वो सोचता है मेरा क्या होगा, और अब मेरे शरीर में भूत ने प्रवेश किया, मुझे अपनी चिंता नहीं है लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उनका क्या होगा, अगर मैं मर भी गया कोई बात नहीं उनका क्या होगा। ये 500 साल पहले भी ये प्रॉब्लम था। व्यक्ति इतना मूर्ख होता है, जनरली लोग सोचते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ऑफकोर्स वो मछुआ तो बैक टू वर्ल्ड गया ही होगा, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, मैं अपराध नहीं करना चाहता, जय हो, क्योंकि वो भी प्योर डिवोटी है। लेकिन वो एक्टिंग कर रहे थे हमारे को दिखाने के लिए उसका अटैचमेंट। एक्चुअली शास्त्र के अनुसार जो पत्नी है पति है बच्चे हैं ये सब बहुत अच्छे सैनिक हैं, बहुत अच्छे सैनिक हैं। जैसे लड़ाई शुरू होती है भाग जाते हैं ये लोग। एक्चुअली युद्ध शुरू होता है कोई मदद नहीं करता। क्या बोला गया इसको, असत असत सैनिक, करेक्ट, फॉलिबल सोल्जर्स। जैसे ही बॉम्ब फटने लगते हैं सब भाग जाते हैं, तो इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई मछुआ जो है वो ढूंढते ढूंढते बाहर निकला, इधर स्वरूप दामोदर गोस्वामी और भक्त सब जगह ढूंढ रहे हैं, चांदनी पूर्णिमा का प्रकाश है, समुद्र के किनारे चल रहे हैं और इस मछुआ को देखते हैं कि मुंह से कृष्ण कृष्ण हरी हरी हरी। पूछा ये मछुआ क्या हुआ आपको, ये गति कैसी हुई? वो कहने लगा कि मैं हरी कृष्ण, मैं पानी हरी, मैं हरी मछली पकड़ हरी, जा हरी रा हरी हा हरी 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 बोलते बताने लगा कि मछली पकड़ने जा रहा था और मैंने सोचा बहुत बड़ी मछली है लेकिन एक भूत, एक डेड बॉडी है, तो ये लाश है या भूत है पता नहीं क्या है। जैसे ही हरी मैंने उसको स्पर्श किया हरी, वो भूत मेरे हरी शरीर हरी में प्रवेश हरी कर हरी गया हरी हरी आप उधर हरी मत हरी जाओ मत हरी के शरीर में हरी वो भूत प्रवेश। तो सभी दामोदर गोस्वामी समझ गए कि ये और बताने लगा कि मैं रात में अक्सर जाता हूँ और रात के समय भूत का डर होता ही है, यहाँ भी जो भूत आया था रात को ही आता था, नहीं कभी दिन में नहीं आया, आया था दिन में आता था प्रभु, दिन में नहीं आता कभी, टाइम होता है इसके लिए। तो मैं रात के समय जानता हूँ भूत आते हैं और मैं हमेशा नरसिंह प्रेयर बोलता हूँ और नरसिंह प्रेयर बोलते ही वो भूत दूर भाग जाते। लेकिन ये जो भूत है ये भूत अगर नशिंग प्रेयर बोल तो डबल आक्रमण करते हैं। इसलिए आप हरी उधर मत हरी जाओ। तो चैतन्य स्वरूप दामोदर बोलते हैं मैं जानता हूँ कौन है, ये श्री कृष्ण चैतन्य है, आप इनको भूत समझ रहे हो, ये भूत नहीं है, ये स्वयं भगवान गौरंग है। अच्छा बोलते हैं नहीं मैं जानता हूँ गौरंग महाप्रभु को जानता हूँ, लेकिन ये तो बहुत विचित्र है, इनके इनके शरीर का लेंथ बहुत बड़ा है और इनके शरीर सफेद हो गया, महाप्रभु का शरीर ऐसा नहीं होता। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को समझाने लगते हैं कि ये कोई और ही है और मैं एक ओझा की खोज में हूँ, मांत्रिक एक्सोर्सिस्ट, जो कि मंत्र बोलने से भूत को निकाल सके। स्वरूप दामोदर बोलते हैं मैं खुद ही ओझा हूँ, मैं भी निकालता हूँ, अपने बाएं हाथ से सिर पर रखते हैं, दाएं हाथ से 3 बार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं भूत पलाई ला, भूत दूर हो गया, चलो मेरे को ले जाओ, कहां पर है चैतन्य महाप्रभु, तुमको ले जाते हैं। दशा को देखकर सारे डिवोटीज दंग रह जाते हैं, कैसे उनकी आंखों की स्थिति होती है। एक्चुअली मैं तो वर्णन कर रहा हूं मैकेनिकली, मेरे अंदर भक्ति नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था लीलामृत में, प्रभुपाद एक बार ये वर्णन कर रहे थे 1967 में डिवोटीज को, ये लीला मछुए वाली लीला। अब प्रभुपाद की आंखों से आंसू आने लगे लीला का वर्णन करते ही। ये शुद्ध भक्त लीला को सुनाते हैं या सुनते हैं, उनको भगवान की अनुभूति होती है। ये प्रेम के सबसे ऊंचे लक्षण बताए जा रहे हैं, जो कि एडवांस डिवोटीज में कभी कभी वो दिखाते हैं, अधिकतर समय दिखाते ही नहीं है। प्रभुपाद भी जब गोरखपुर में एक बार थे, जय राधा माधव गा रहे थे, और अचानक उनके शरीर से प्रेम के लक्षण दिखाई पड़ने लगे, आंखों में आंसू आने लगे, वो स्तब्ध हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर वो कहने लगे बस आप हरे कृष्ण गाइए, ये भजन में सब कुछ है, गोवर्धन यमुना वृंदावन कृष्ण राधा रानी गोप ग्वाल ग्वाल सब है। तो फिर दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के वस्त्र बदली करते हैं, उनको सूखे वस्त्र पहनाते हैं और उनको लेकर आते हैं, और फिर जोर से कीर्तन करते हैं। जब सारे भक्त उच्च स्वर में गाते हैं हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उच्च स्वर में कीर्तन करते तो महाप्रभु बाह्य क्षेत्र में आते हैं और कहते हैं आप मुझे कहाँ ले गए, कहाँ ले आए, मैं वृंदावन में था, मैं यमुना के किनारे था, और गोपियों के कहने पर मैं कुछ फूल लाने के लिए गया था, और अब आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए। तो इस तरह महाप्रभु कभी कभी प्रेम के लक्षण दिखाते थे। इसे जगन्नाथपुरी को इतना गुह्य स्थान बताया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई गई है। और कौन अच्छा और कौन सा अच्छा ज्यादा अच्छा उदाहरण हो सकता है कि जब भगवान स्वयं ही अपने प्रेम अपने अपने प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई भी जीवात्मा उतना प्रेम कभी नहीं दिखा सकता जितना कि स्वयं गौरंग भगवान कृष्ण के प्रति दिखा रहे। महाप्रभु इतने उत्सुक होते थे भगवान के दर्शन के लिए। आज का प्रभुपाद पर्पट में बोल रहे हैं कि यू कैन सी गॉड। जनरली कहा जाता है कि भगवान को देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड वॉन्ट्स टू सी यू। भगवान की सेवा ऐसी करनी चाहिए कि भगवान देखना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि हमें उत्सुक होना चाहिए कि इसी जीवन में शरीर छोड़ने से पहले एक बार भगवान के दर्शन हो, उत्सुक होना चाहिए। आज जब भगवान के नीतीस के दर्शन कर रहे हैं तो वो भी भगवान से अभिन्न है, उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए। वो फेमस कहानी है कि जब महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन कर रहे थे, क्योंकि पहली बार जब वो जगन्नाथ के पास गए तो बेहोश हो गए थे, तो सारंग भट्टाचार्य बोले आप पास से दर्शन मत करना। तो महाप्रभु ने स्वीकार किया कि मैं गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहकर दर्शन करूंगा। एक बूढ़ी उड़िया माता जी दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थी, शायद उनका हाइट ज्यादा नहीं रहा होगा और भीड़ इतनी थी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा ऊपर से दर्शन करना चाहिए। उन्होंने एक पैर गरुड़ स्तंभ पर रखा और दूसरा पैर श्री चैतन्य महाप्रभु पे, और वो दर्शन करने लगे भगवान जगन्नाथ। महाप्रभु के सेवक गोविंद ने जब ये देखा तो बहुत गुस्से हुए, उन्होंने स्त्री को डांटा कि नीचे उतरो। वो स्त्री समझ गई कि मैंने अपराध किया, उसने माफी मांगी, लेकिन महाप्रभु गोविंद को डांटने लगे कि तुमने क्यों उसको रोका, भगवान जगन्नाथ ने मुझे इतनी उत्सुकता नहीं दी दर्शन के लिए जितना स्त्री को दी। और वहां लिखा है, कविराज गोस्वामी लिखते हैं, बंधो तार पाए आई वर्शिप फॉर लोटस फीट, मैं उस स्त्री के चरणों की वंदना करता हूं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि तो भगवान के दर्शन के लिए इतनी उत्सुकता है, ये ईगरनेस भी जरूरी है। हालांकि हम सेवा में मग्न रहना चाहते हैं, लेकिन उत्सुकता होना कि मैं भगवान के धाम लौटूं, यही जन्म में अपने कार्य को पूरा करूं, ये जरूरी है। नहीं तो हमारे भक्ति की सारी क्रिया मैकेनिकल हो जाती है, एक सुबह उठना है, 9 बजे तक कार्यक्रम है, फिर स्केड्यूल में जो सेवा है वो कर लिया बस। ऐसा नहीं कि स्केड्यूल में सेवा हो गई यानी बैक टू गॉडहेड चले गए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आश्रम में रहने के लिए। लेकिन अगर वास्तव में आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो आपकी आंखें आपके हृदय में एक एक विरह की भावना होनी चाहिए। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद शिवनो को, कहां पर है कृष्ण, कहां पर है? क्या गोवर्धन के पास है, क्या यमुना के पास है? कब वो दिन आएगा जब नित्यानंद प्रभु की कृपा से आर कबे निताई चंदे करुणा हबे संसार वासना मोर कबे तज, कब मेरे संसार की वासना नष्ट होंगी? सुप्त होना कि कब कब आएगा नयनम गलद शुधारय, कब मेरे हृदय में शुद्धता आएगी। श्री महानिधि महाराज की किताब में एक बहुत सुंदर इसके बारे में एक आर्टिकल है कि कैसे कृष्ण के लिए विरह की भावनाओं को विकसित किया जाए। यूनियन इन सेपरेशन, विरह में मिलन। युगायतम निमिषेन चक्षुष प्रविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। ये शिक्षाश्रम का एक श्लोक है कि हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी 12 साल के समान लग रहा है, ये उससे भी ज्यादा, और आंखों में ऐसे अश्रु प्रवाह हो रहे हैं जैसे मूसलधार बरसात होती है, और आपके बिना ये पूरा दुनिया मुझे शून्य नजर आ रहा है। तो महानिधि महाराज बताते हैं ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु किस भाव में है? वो राधा रानी के भाव में है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा रानी को क्या अनुभव हुआ वो इस श्लोक में बताया गया है। द फीलिंग ऑफ एक्सेसी इन सेपरेशन इज वेरी हेल्पफुल इन अटेनिंग लव ऑफ गॉड। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए विरह की भावना बहुत लाभकारी है। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमको धीरे धीरे लगेगा कि सिवाय कृष्ण के ये पूरी दुनिया सुनी है, एम्प्टी, मीनिंगलेस है। जैसे विरह बढ़ता जाएगा व्यक्ति भगवान को साक्षात दर्शन के लिए योग्य बन जाएगा। श्री प्रभुपाद का मैं एक प्रवचन बता रहा हूँ आपको जो कि चैतन्य चरितामृत की आदि लीला से प्रवचन नहीं सॉरी परपोट। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, मैं इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा क्योंकि बहुत से लोग समझ जाते हैं, और साथ साथ फिर हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। अब जाग रहे हैं ना, कीप योर आईज ओपन सर, तो मैं भी ऐसे लेक्चर दूंगा तो वीडियो निकालना चाहिए। प्लीज कीप ओपन। इट इज द एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी, दिस इज फ्रॉम प्रभुपाद आदि लीला फिफ्थ चैप्टर सेवेंथ चैप्टर। इट इज द एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी दैट व्हेन ही चैंट्स द हरे कृष्ण महामंत्र हिज आईज फिल विद टीयर्स हिज वॉइस फॉल्टर्स एंड हिज हार्ट थ्रॉब्स। भक्ति अभिलाषा होती है कि ऐसा दिन कब आएगा जब मैं हरि नाम लूं और मेरे आंखों से आंसू आए, मेरे आवाज गदगद हो जाए और हृदय धड़कने लगे। दीज आर गुड साइंस इन चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्ण। ये अच्छे लक्षण है नाम जप करने के, आंखों से आंसू आना, आंखें बंद होना नहीं, आंखों से आंसू आना। दीज आर गुड साइंस इन एक्सटेसी वन विल फील दैट दिस होल वर्ल्ड इज वेकेंट इन द एब्सेंस ऑफ गोविंद। ऐसा लगेगा कि बिना भगवान गोविंद के पूरी दुनिया ही सुनी है। दिस इज अ साइन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम गोविंद, विरह। जब हमें किसी से विरह होता है तो हम उस व्यक्ति को, व्यक्ति के बिना कोई चीज अच्छी नहीं लगती। श्रील प्रभुपाद कभी कभी एक मंदिर छोड़ के जाते तो भक्तों को इतना दुख लगता है, पूरा सुना सुना लगता है प्रभुपाद जी के बिना। इन मटीरियल लाइफ वी आर ऑल सेपरेटेड फ्रॉम गोविंद एंड आर एब्जॉर्ब इन मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। देयरफॉर व्हेन वन कम्स टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ही बिकम्स सो ईगर टू मीट गोविंद दैट विदाउट गोविंद द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स अ वेकेंट प्लेस। जब कोई व्यक्ति की इंद्रिय आध्यात्मिक स्तर पे आती है तो भगवान से मिलने के लिए इतना उत्सुक होता है, इतना उत्सुक होता है कि भगवान गोविंद के बिना उसको पूरी दुनिया निर्जन लगता है, सोचता है कोई है ही नहीं यहाँ पर। श्री चैतन्य महाप्रभु, अब ये महानिधि महाराज के शब्द हैं, द गोल्डन वॉल्केनो ऑफ डिवाइन लव टॉट अस हाउ टू अटेन द स्टेज ऑफ मीटिंग कृष्णा बाय कल्टिवेटिंग फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। गौरंग महाप्रभु क्या सिखाते हैं कि अगर आप कृष्ण से मिलना चाहते हो तो विरह की भावना को बढ़ाना चाहिए, इस भावना से भगवान का नाम जप करना, श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में जीवात्मा का भगवान से संपर्क सबसे पहला आता है। कैसे? सबसे पहला संपर्क कैसा आता है? हरि नाम के द्वारा। हरि नाम जो है वो पहला लिंक है जो भगवान के साथ हमें जोड़ता है। शिला प्रभुपाद से गुरु मस्ट टीच हिज डिसाइपल्स हाउ टू फील कॉन्स्टेंट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा वाइल एंगेज इन हिज सर्विस। गुरु का कर्तव्य शिष्य को सिखाना कि सेवा करते करते साथ में कृष्ण से विरह अनुभव होना। इसका मतलब ये नहीं कि हम विरह अनुभव कर रहे हैं, यानी हम कोई सेवा नहीं कर रहे, खाली रोते जा रहे हैं, ऐसे नहीं। ये बहुत एडवांस अवस्था है कि भक्त सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ उसको विरह की भावना का अनुभव हो रहा है। जैसे विरह में रुक्मिणी ने कभी भगवान के दर्शन किए नहीं थे। रुक्मिणी बहुत उत्सुक थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। जो ओरिजिनल लव लेटर है वो रुक्मिणी ने लिखा था और वो ब्राह्मण के हाथ भेजा था, आपको कथा मालूम है। तो रुक्मिणी जो है उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए थे, फिर उनके अंदर ये प्रेम के लक्षण कैसे प्रकट हुए? वो उस पत्र में लिखते हैं कि ये कृष्ण तुम जल्दी से आओ, अगर आप मेरा उठाकर मेरे को यहाँ से उठाकर ले नहीं जाओगे तो शिशुपाल मुझे ले जाएगा, आपके विरह में मुझे एक क्षण में युग के समान प्रतीत हो रहा है। क्या इसका उत्तर है? रुक्मिणी को ये कैसे भावनाएं प्रकट हुई बिना कृष्ण के दर्शन के? श्रवण, कितने श्रवण किया था उन्होंने? नारद मुनि से। नारद मुनि अक्सर आते थे भीष्मक के महल में और भगवान के गुणों का, उनके रूप का गान करते थे, इसीलिए उनके हृदय में जो प्रेम है, जो पूर्व राग है वो जागृत हुए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कबूनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए। सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है और जागृत होती है श्रवण करने से, कृष्ण के गुणों के एक नाम रूप लीला सुनने से। रुक्मिणी एक अपने पत्र में लिखती हैं, माय डियर कृष्णा, ओ इनफेलेबल, ओ मोस्ट ब्यूटीफुल वन, एनी ह्यूमन बीइंग हु हियर्स अबाउट योर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एंड पास्ट टाइम्स इमीडिएटली अब्सॉर्ब्स थ्रू हिज हियर्स योर नेम फेम एंड मटेरियल योर नेम फेम एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। हे कृष्ण, जो भी अपने कानों के द्वारा आपका नाम रूप गुण सुनता है उसमें मग्न हो जाता है। Thus all his material pangs subside and he fixes your form in his heart। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और अपने हृदय में आपके चित्र को अंकित कर लेते हैं। इस प्रेम के कारण वो अपने आप के हृदय में आपका दर्शन करते हैं। तो ये विप्रलंब भाव की कहानी। नौवें स्कंद में श्रीमद् भागवत के प्रभुपाद जी रामायण का उल्लेख करते हैं और उसमें बताते हैं कि जब भगवान राम सीता की खोज में बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं, जब प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक कारण इस लीला का यह है कि भगवान विप्रलंब प्रेम का अनुभव करना चाहते थे, विरह प्रेम का, और सिखाना भी चाहते थे। और कभी कभी हमें पता नहीं चलता, जैसे एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी को देखे और वो कहने लगे कि आप बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है, आपका चेहरा बहुत पीड़ित लग रहा है। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, यू मे सी अ वैष्णव लुकिंग सैड आउटसाइड बट यू शुड नो दैट इज रिलिशिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस विद इन। कभी कभी हो सकता है कि भक्त बाहर से दुखी लग रहा है, वो विरह का अनुभव कर रहा है, लेकिन अंदर से उसको बहुत प्रसन्नता है। जरूरी नहीं है कि प्रभुपाद जी के हर फोटो में कोई स्माइल हो, जैसे ये टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट में होता है ऐसे हर बार। एक बार एक डिसाइपल ने भी ऐसे बोला, प्रभुपाद आप इस फोटो में बहुत दुखी लग रहे हो। प्रभुपाद जी बोले, दैट वॉज अ मोमेंट ऑफ एक्सेसिव, विरह का प्रेम का अनुभव था। फिर उन्हें दूसरी फोटो दिखाई जहां पे मुस्कुरा रहे हैं, बोले ये अच्छी है, लेना ये अच्छी है। तो बाहर से जज नहीं कर सकते कि व्यक्ति की अंतरंग भावना क्या है। इन अदर वर्ड्स, द मोर वी फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण द मोर वी विल बिकम अटैच्ड टू कृष्ण। सेपरेशन ओपन्स द डोर टू मीटिंग कृष्ण। विरह मिलन के दरवाजे को खोलता है। जब महाप्रभु विरह अनुभव करते जगन्नाथ से, जब 15 दिन के लिए अनवसर होता, आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है ज्येष्ठ पूर्णिमा के समय, रथ यात्रा से 15 दिन पहले पब्लिक स्नान होता है वहां आनंद बाजार के पास। एक ये बना हुआ है प्लेटफॉर्म, जहां पर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को ले आते हैं और उनको साल में एक बार स्नान कराया जाता है, और स्नान करने के कारण बाहर स्नान किए ठंडे पे वो बीमार हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते, सिर्फ उनके अंतरंग पुजारी उनसे मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन नहीं होते थे तो अलाल नाच चले जाते थे, और उनको इतना विरह होता था। उस विरह के कारण, उस विरह के प्रेम की गर्मी में जब वो लेटते शिला के ऊपर तो शिला पिघल जाती है। आपने से कई भक्तों ने देखा है वो शिला जो अलालनाथ में है, उसमें भगवान गौरंग के सिर, उनके पैर, उनके घुटनों के निशान बने हुए शिला में। इतना स्ट्रांग विरह अनुभव करते थे। शिला भक्ति चरण ठाकुर भी जब अलालनाथ पहुंचे तो वो अचानक जंगल के अंदर चले गए और भक्त उनको खोजने लगे, पूरे दिन खोज नहीं पाए। और शाम को जब लौट कर आए तो बताने लगे, मैं विरह अनुभव कर रहा था। ये स्थान जो वृंदावन से अभिन्न है, और इसीलिए उन्होंने मूर्ति स्थापना की जिसका नाम है गोपी गोपीनाथ, जो वहां पे ड्यूटी थे अलालनाथ में, उनका नाम गोपी गोपीनाथ बताया गया। विदाउट सेपरेशन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ साधना। द सिक्स गोस्वामी एंड देयर फॉलोअर्स थॉट दैट अ साधक शुड एक्सपीरियंस द मूड ऑफ सेपरेशन, विरह का अनुभव करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, ये 1969 की बात है, सितंबर 18, श्री प्रभुपाद जी ईश्वर गोस्वामी अष्टक पे लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर में बोलते हैं, जैसे राधा रानी कृष्ण से अनुभव करते हैं विरह का, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण से विरह अनुभव करते थे। द टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज टू कल्टीवेट फीलिंग ऑफ सेपरेशन, नॉट दैट ऑफ मीटिंग। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यह है कि विरह की भावना विकसित करना। जो छह गोस्वामी है कभी बोलते नहीं थे कि मैंने कृष्ण के दर्शन किए, वे यही कहते थे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद शून कुतः। हे राधा रानी आप कहाँ पर हो, हे कृष्ण आप कहाँ पर हो, आपके पार्षद कहाँ पर हैं, क्या आप गोवर्धन के पास में हो, क्या आप यमुना के पास में हो। और ये पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से सुनिए। The business of the Goswamis was crying like this. Throughout the whole tract of land, they were crying and searching after Radha and Krishna. So we have to follow the footprints of the Goswamis. How to search out Krishna and Radharani in Vrindavan or within your heart? Prabhupada ji बोलते हैं कि गोस्वामी इस तरह से राधा कृष्ण को ढूंढते रहते हैं वृंदावन में, हमें भी उनके पदचिन्हों में चलते हुए राधा और कृष्ण को ढूंढना है वृंदावन में। और फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हृदय में, ऐसा नहीं हो कि सब लोग सेंटर छोड़ के वृंदावन चले जाएं, एक्चुअली राधा कृष्ण हृदय में ही है। प्रेमांजन चूरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयंती, क्योंकि जिसका हृदय शुद्ध है वो हृदय को, हृदय के अंदर भगवान को देख सकते हैं। हर समय तो भगवान है, हर समय कृष्ण है। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि अगर हृदय में परमात्मा है, कृष्ण है, और कृष्ण तो अकेले नहीं होते, इसका मतलब उनके पार्षद भी हैं, तो प्रभुपाद जी बोले एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हृदय में है, पूरा आध्यात्मिक धाम ही हृदय में ही है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की तरीका है। This is the process of Chaitanya Mahaprabhu, feeling of separation. Feel the separation. The more you feel separation from Krishna, you should understand that you are advancing. जितना हमें विरह अनुभव हो उतना हम प्रगति कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू सी कृष्ण आर्टिफिशियली, वी एडवांस इन सेपरेशन एंड दैट विल बी परफेक्शन, दैट इज द टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ये प्रभुपाद जी का प्रवचन का आखिरी सेंटेंस है कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, विरह की भावना बढ़ाओ और वही सफलता को, सफलता की ओर ले जाएगा। अब एक छोटा सा लेक्चर है जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दिया था विरह के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर की इंग्लिश बहुत हाई होता था, लेकिन फिर भी एक दो लाइन शायद समझ में आ जाए। वे कहते हैं इस प्रवचन में, इन द एब्सोल्यूट रीजन सेपरेशन एक्ट्स टू इनेबिलिएट अस हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। व्हेन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग वी फील रादर हेल्पलेस, but there in the spiritual world the acts of separation provides more opportunities of serving the Lord. इस भौतिक दुनिया में अगर किसी से विरह हो तो हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के धाम में जितना विरह बढ़ता है उतना सेवा बढ़ने लगती है। next paragraph Bhaktisiddhanta Thakur bolte hain, the very procedure of approaching Krishna is to realize the condition of separation. Here we do not find Krishna. The absolute truth cannot be had here, although we may have ample inclination for having him. Our equipments of the mind and senses are quite inadequate to gain access to the realm of transcendence. बोलते हमारे भौतिक इंद्रियां जो हैं वो भगवान को नहीं जान सकते, या हम कृष्ण को भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते। वो एक फेमस श्लोक है, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रायम इंद्रिय, कि भगवान के नाम इत्यादि जो हैं वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। अनलेस वी हैव डिवोशनल एप्टीट्यूड वी कैन नॉट इन्वोक हिम हियर। We must find out the means to approach Krishna, and that is called sadhana bhakti. Sadhana bhakti kya hai tarika hai? Woh ye tarika hai ki kaise kaise Bhagwan se apne virah prem ko aage badhaya jaye. When we are disappointed in not having Krishna's presence, we should thank our stars and think, I know that Krishna wants me to acquire more affinity for him, and he has given me that opportunity. Agar Bhagwan ke sang laabh nahi ho, to vyakti ko is tarah se sochna chahiye. कि भगवान मेरे को विरह प्रेम में आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में वो बोलते हैं कि भगवान की सेवा जो है सबसे अच्छी वो नाम के द्वारा की जा सकती है। भगवान इस समय हमारे से दूर हैं, लेकिन ये नाम जप के द्वारा, कंटिन्यूअस नाम जप करने से भगवान का अनुभव हो सकता है। कीर्तनीय सदा हरि, जब कोई व्यक्ति हर समय पुकारता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब वो इस तरह से भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है, तब उसमें कोई कृष्ण की अनुभूति हो सकती है। और लास्ट सेक्शन है यहाँ पर क्राइंग फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए रोना। हम बोलते हैं ना कि ऑइंटमेंट होना चाहिए, प्रेम अंजन होना चाहिए आंखों में। वो प्रेम का अंजन क्या है? वो प्रेम का अंजन है विरह के आंसू। जब आंखों से आंसू आने लगे विरह के, तो वो काजल लग जाएगा, वो ऑइंटमेंट है, और फिर सब कृष्ण के दर्शन हो सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु और ईश्वर गोस्वामी थे, वो दिन रात कृष्ण के विरह में रोते रहते थे। जब हम पुकारते हैं हे राधा रानी, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ, ये भी एक रोने का तरीका है। हम बोल रहे हैं मेरे को स्वीकार करो, मैं आपसे बिछुड़ गया हूँ। अय नंद तनुजा किंकरम पतितम माम मिशन भवम बुधो कृपया तव पाद पंकज सधूली सदृशम निशिंत। मैं भवसागर में गिर गया हूँ, कृष्ण जल्दी आओ, मेरे को बाहर निकालो, मेरे को अपने चरणों में ले जाओ। एक बार एक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये पुस्तक में प्रभुपाद जी बोलते हैं, द चैंटिंग इज एग्जैक्टली लाइक द जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर इट्स मदर्स प्रेजेंस। मदर हरा हेल्प्स द डिवोटी अचीव द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम फादर हरि। ये चैंटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है कि जीवात्मा भगवान को पुकार रहे हैं। जैसे माता और माता को बच्चा पुकारता है, तो हम राधा रानी को पुकार रहे हैं, कृष्ण को पुकार रहे हैं। 1971 में श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर में बोलते हैं दिस कलयुग इज वेरी बैड, ये कलयुग बहुत खराब है। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड ऑलवेज क्राई एज लॉर्ड चैतन्य टॉट अस। हमें कृष्ण का आश्रय लेना है और रोना चाहिए, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ये पुकारना चाहिए। ये पुकारते हैं हम लोग, खाली गिनते हैं हरे कृष्ण चार साढ़े चार मिनट में जप हो गया, हरे रामा 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 हरे, आज मैंने ओलंपिक रेस जीत लिया, ना भूत है ना भविष्यति, गोल्ड मेडल मुझे मिले, या जो भी हमारा साढ़े छह मिनट साढ़े सात मिनट, वो तो नेचुरल है, टाइमिंग करना जरूरी हो जाता है क्योंकि मन भागे नहीं। लेकिन आप कितनी बार जप में कितनी बार एक्चुअली कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। मैं क्यों ये क्लास ले रहा हूँ, आपको लगेगा कई लोग उठ के चले गए, मैं क्यों क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके अंदर ये भावनाएं नहीं आएंगे, आप बैक टू ग्वालियर नहीं जा सकोगे, आप बैक टू ग्वालियर नहीं जा सकते। जब तक आपको नाम जप में ये भावना नहीं होगी कि मैं कृष्ण को पुकारना चाहता हूँ, तब तक तब तक आप भगवान के धाम नहीं जाओगे। आपकी सेवा कितनी परफेक्ट हो, आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आश्रम में पोस्ट मिल जाएगा, लॉकर फैसिलिटीज सब कुछ मिल जाएगा। आप रोगे नहीं भगवान नहीं मिलेंगे। अब आज रो के सिंसियरली रो तो भगवान कृपा मिलेगी। ये आपको लगता ही नहीं है कि मुझे भगवान मिलने चाहिए। हम क्या हो गए, हम सेटल हो गए हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, मतलब एग्रीमेंट हो गया, हम जो भी लिखा हुआ है सेवा वो कर रहे हैं ना, जो भी लिखा मना नहीं कर रहे हैं, या जो भी हमारे, अगर आप गृहस्थ हैं तो घर के ड्यूटीज कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सोलह माला पूरा हो रहे हैं, एक घंटा रीडिंग भी हो जाता है, बस हमें विरह नहीं लग रहा क्यों मैं संसार से कैसे निकलूंगा, कृष्ण कब मिलेंगे। कृष्ण बुक में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं और गाय सुन रहे होते हैं, तो गायों को ऐसा लगता है कि जैसे अमृत कोई डाल रहा हो कानों में, और वो अपने कानों को ऐसे फैला देते हैं कि अमृत को कैच कर सके, जैसे कप कोई ग्लास में कोई अमृत लेता है। और जब कृष्ण की मुरली की आवाज आती है तो जो बछड़े होते हैं जो गाय का दूध पीने गए होते हैं उनके जो निपल्स को स्पर्श कर रहे होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, वो आगे आगे नहीं आगे पी नहीं सकते, उनकी भावनाएं मग्न हो जाती, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इवन द काउज एंड कैल्व्स इन वृंदावन नो हाउ टू क्राई फॉर कृष्ण। जो बछड़े हैं और जो गाय हैं वृंदावन के, वो भी रो रहे हैं कृष्ण के लिए। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस अफेक्शन कैन बी कल्मिनेटेड इन शेडिंग टीयर्स फ्रॉम द आईज। कृष्ण भावना प्रेम का जो कंक्लूजन है वो आंखों से आंसू बहना है कृष्ण के। और आंसू कब आएंगे, ये आपको लगेगा कि मैं अभागा हूं, मैं पतित हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है सिवाय कृष्ण के। आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो ए मारो। हे नंद नंदन कृष्ण, हे राधारानी, मेरे पर दया करो, मेरे को अपने चरणों से दूर मत भेजो। कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है, कृष्ण नाम में इस तरह से पुकारना चाहिए। इन धाम में जाते तो धाम से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम अगर ऑल्टर भगवान की मूर्ति स्थापना करते हैं तो पहले ऑल्टर को धोया जाता है ना, गुंडीचा मंदिर याद है आपको, उन्होंने भगवान के ऑल्टर को धोया था। ऐसे ही हमारे हृदय के ऑल्टर को कैसे धोना है, आंसुओं से, विरह के आंसुओं से, समर्पण के आंसुओं से। और उसको माला पहनानी है कौन सी, प्रेम नाम के, शुद्ध नाम के, शुद्ध नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में कृष्णा बुक में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं, वन हु विल क्राई फॉर कृष्णा ही विल नेवर कम डाउन टू द मटेरियल प्लेटफॉर्म। अगर कोई एक बार भी सच्चे दिल से भगवान को पुकार लेता है रोते हुए तो भौतिक स्तर पे नहीं आएगा। That crying is not so easy. इधर गौर गोविंद महाराज एक बार लेक्चर दे रहे थे, वो ऐसे बता रहे थे कि मैं लर्न टू क्राई, क्राई रोना चाहिए। आप रोते हो न्यू वृंदावन में, फिर राधानाथ स्वामी महाराज में बैठे थे, उनको देख के बोले हाँ आज मैंने देखा जपा में, ही नोज हाउ टू क्राई, ये जानते हैं कि कैसे भगवान के लिए रोना है। तो क्या होगा, हम जैसे वो छिलका लेके चले जाएंगे, शिंगदाना इधर ही रह जाएगा, छिलका 100 ग्राम छिलका पैक कर दिया, और हमको लगेगा कि छिलका या अच्छा छिलका ही नहीं, बड़ा पोस्ट छोटा छिलका, अरे उसको बड़ा छिलका मिल गया, उसको मेरे को छोटा छिलका, 100 ग्राम मिल गया, 50 ग्राम, अरे एक दाना भी मिल गया अंदर का अच्छा, छिलका बिल्कुल नहीं मिला तो भी चलेगा नहीं, भक्ति का छिलका लेके चले जाएंगे। अंदर सब्सटेंस ये है कि कृष्ण के लिए पुकारना, कैसे बाहर के लोग हम ऐसा ही करते हैं कि आओ भाई कलश चढ़ाओ है ना, तो 500 रुपए या कितना अभी गोपालाचार्य को 5000 रुपीज है कलश हो गया, तो बाहर के लोगों के लिए अच्छा है उनको सेवा में लगाने के लिए, लेकिन हमारा कलश होना चाहिए आंसुओं से भरा हुआ कलश, है ना, हम रो रहे हैं कृष्ण के लिए। तब जन्माष्टमी मनाई जाएगी हृदय में, तब कृष्ण प्रकट होंगे हृदय में। चैतन्य महाप्रभु रोते थे, और रोते हुए क्या बोलते थे, ये मेरा रोना असली रोना नहीं है, अगर मैं भगवान का सच्ची प्रेमी होता तो मैं प्राण को मेंटेन नहीं करता, मेरे प्राणों का अंत होना हो जाता, चेतन अब वो सन्यासी हैं, पूरी दुनिया को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन कृष्ण के लिए रो रहे हैं। गौरकिशोर बाबा जी महाराज कई बार कृष्ण चैतन्य बोलते हुए भगवान का नाम पुकारते, एक दिन तो कृष्ण चैतन्य बोलते हुए 13 दिन तक रोते रहे, 13 दिन तक पुकारते रहे। तो कब रोना कब आता है? जब विरह होता है, विरह का अनुभव होता है। और कभी कभी इसलिए भी होता है क्योंकि उस व्यक्ति को आनंद होता है कृष्ण के विरह में भी। मायावादी क्या बोलते हैं, ये रोना भी माया है, सब कुछ माया लगता है, जो वो बोल रहे हैं वो भी माया है फिर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु में सिखाते हैं कि कैसे ये जीवन की हाईएस्ट चीज है। गौर गोविंद महाराज बोलते थे कि मैंने ये भुवनेश्वर मंदिर खोला है, इट इज अ स्कूल टू टीच पीपल हाउ टू क्राई फॉर कृष्ण, ये एक पाठशाला है सिखाने के लिए। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में विरह पुकार सकता है उसने कृष्ण भजन की पूर्णता प्राप्त कर ली, कोई हाईएस्ट पॉइंट है, उसका जीवन सफल है। एक बार प्रभुपाद 1976 में लेक्चर दे रहे थे मई में, और बोले, किसी ने पूछा धर्म का मतलब क्या है, व्हाट इज रियल रिलीजन, प्रभुपाद जी बोले रियल रिलीजन मीन्स टू लव गॉड, सच्चा धर्म है भगवान से प्रेम करना। इफ योर हार्ट इज ऑलवेज क्राइंग फॉर गॉड दैट इज रियल रिलीजन, अगर आपका हृदय हमेशा भगवान के लिए रो रहा है तो सच्चा धर्म है। फिर 1974 में और एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जीवन की सफलता है कि ये भक्त को लगता है कि कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं मेरे लिए। 1974 में और एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यक्ति को एक्सेटिक होना चाहिए, भाव विवल होना चाहिए कृष्ण के लिए रोते हुए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है ये जो भावना है, युग शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद भीर, ये राधा रानी की भावना है। हाइएस्ट परफेक्शन ऑफ योगा इज राधा रानी, कृष्णा गोज टू मथुरा एंड ऑल नाइट राधा रानी इज क्राइंग क्राइंग क्राइंग। जब कृष्ण मथुरा जाते हैं रानी रोते बोलते कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। इसका कंक्लूजन क्या है, पूरे आज का जो प्रवचन है उसका ये है कि हमें नाम जप करते समय भगवान से मांगना चाहिए, हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, हे गौरनिताई, मैं बहुत पतित हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, आपका नाम लेते हुए आंखों से आंसू आना छोड़ो, मेरे आंखें बंद हो रही है, नींद आ रही है मुझे, मेरे को नाम में कोई रुचि नहीं है, मेरे पे दया करो भगवान, मेरा हृदय पत्थर के समान है, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे से बढ़ के पापी कोई नहीं है, मैं दुष्ट हूँ, मैं अधम हूँ, आप मेरे पर दया नहीं करोगे, आपके सिवा कौन दया करेगा, आप पतित पावन हो। तो ऐसे भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा मिलेगी। रोना तो हाईएस्ट स्टेज है, कम से कम पहले रोना चाहिए कि मैं रोना नहीं आ रहा, क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई। भक्तिधाम ठाकुर से किसी ने पूछा, आई कैनॉट क्राई, इज दैट क्राइंग, यू कैनॉट क्राई, देन यू क्राई दैट यू कैनॉट क्राई, रो कि मेरा रोना नहीं आ रहा, मेरा दुर्भाग्य। और लास्ट में चैतन्य भागवत में लिखा है, कृष्ण बोली कांडिले से कृष्ण नाम मिले, धने कुले किचु नाही कृष्ण न भजिले। जो कृष्ण का नाम लेते पुकारता है और रोने लगता है वो व्यक्ति सच्चा रूप से कृष्ण नाम ले रहे। जब कोई व्यक्ति पुकारता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जो कृष्ण कृष्ण बोलकर पुकारते हैं रोने लगता है, तब व्यक्ति समझ सकता है कि वो व्यक्ति ने सही में उसने कृष्ण को वो सच्चे रूप से नाम जप कर रहे हैं, वो सच्चा नाम जप। इसके बिना ऊंचा परिवार और धन सब बेकार है, सच्चा धन है नाम धन, हरि नाम धन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व करते रहने। इस धन के लिए तरसना चाहिए, इस धन को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, और जितना मिले उसको संभाल के रखना चाहिए। फिर हमारे अंदर प्रेम का अंजन आएगा, जब प्रभुपाद जहां तक ठाकुर बोल रहे हैं, फिर हम भगवान को देख सकेंगे सब समय पर हर स्थिति में। तो लोग जाग रहे कि नहीं, हरी हरी धर्म के प्रश्न है किसी को,
कलयुग में देवता आते नहीं ऐसे, लेकिन प्रभुपाद जब लेक्चर देते थे तो जब ऑरेंसेज किया होता तो बहुत कम लोग आते, तो प्रभुपाद बोलते कि बहुत सारे देवता भी इधर आए थे,
यज्ञ में नहीं आते,
जनरली यज्ञ में।
लेकिन हमारे देवता आए नहीं आए, हरि नाम ले रहे तो कृष्ण आ रहे हैं, जब कृष्ण आ गए तो सारे देवता आ रहे हैं। मतलब भौतिक यज्ञ की बात कर रहे हैं, एक्चुअली मटेरियल यज्ञ। लोग 5 मिनट के लिए ऐसे सच्चे दिल से भगवान को पुकारें, जैसे कि आज यह पुस्तक में पढ़ा।